आइए प्रवेश करते हैं चिर मधुर धाम श्री वृंदावन। श्री गोविंद स्थली वृंदावन धाम का एक मनोरम अंग है। उत्तर की दिशा में जमुना जी बहती हैं। इनकी दो धाराएं पूरब से और पश्चिम से अपनी भुजाओं से गोविंद स्थली को घेर के रखा है। ऐसे लगता है जैसे कि जमुना जी ने गोविंद स्थली को अपनी गोदी में बिठा कर रखा हो। गोविंद स्थली एक टीले के आकार का है। वो देखिए एकदम बीच में श्री श्री राधा गोविंद जी का योगपीठ है। ये योगपीठ क्या है? वही तो मणि मंदिर है, दिख रहा है ना आपको। इसके चार कोने में चार कल्पवृक्ष हैं और इसके अंदर चारों तरफ चार मंडप और चार कुंज भी हैं। माधवी फूलों का मंडप, मालती मंडप, नवमल्ली का मंडप और स्वर्णयुति मंडप। कुंज है वो जो सफेद रंग का दिख रहा है ना कुंज, वो है श्वेतांबुज कुंज। वहाँ पर राधा गोविंद जी पासे खेलते हैं। और ये पूरब की तरफ जो नीले रंग का कुंज दिख रहा है उसका नाम है नीलांबुज कुंज, वहाँ उनकी वेशभूषा होती है। दक्षिण की तरफ ये जो गुलाबी रंग का कुंज देख रहा है वो है अरुणांबुज कुंज, वहाँ पर जुगल सरकार भोजन करते हैं। और पश्चिम की तरफ जो सुनहरे कुंज है उसका नाम है हेमांबुज कुंज। हाँ, और आपने ठीक समझा, उसमें जुगल सरकार की शयन लीला होती है। इसके बाहर आठ सखियों के कुंज, उसके बाहर 16 कुंज, फिर 32 कुंज और इस तरह से हजारों सखियों के कुंज आपको देखेंगे। चार द्वार पर आपको चार सखियों के कुंज दिख रहे हैं ना, वो जो चार द्वारी हैं, एक है वृंदा जी का पूरब की दिशा में, फिर दक्षिण में वृंदारिका जी का, पश्चिम में मेनका जी का कुंज और उत्तर में मुरला जी का कुंज। आइए चलते हैं हेमांबुज कुंज की तरफ, जहाँ पर हमारे पिया पियतम रास विलास के बाद शयन कर रहे हैं। सखियाँ अपने अपने कुंज में शयन कर रही हैं। गुरु मंजरिया और गुरुदेवी भी सो रहे हैं। और वो देखिए आप भी अपनी गुरुदेवी के चरणों के तले सो रही हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे पेड़ और लताएं घिरे हुए हैं। वृक्ष और लता सभी निद्रा में हैं। और जुगल सरकार की तरह ये लताएं और वृक्ष, ये पंछी, ये सब अपने अपने प्रियतम के साथ सो रहे हैं। आम के पेड़ को माधवी लता ने अपनी बाहों में करके रखा है। अनार के पेड़ को मालती लता ने घेर के रखा है। द्राक्षा को स्वर्ण युथि और कदम्ब पेड़ को युथि लता घेर के रखा है। तीलू वृक्ष नवमल्लिका की बाहों में सो गया है। और इन्हीं पेड़ों पर कोकिल कोकिला, शुक शारी, मयूर मयूरी, कबूतर कबूतरी सब एक दूसरे के आगोश में निद्रा जा रहे हैं। भ्रमर भ्रमरी भी एक दूसरे की बाहों में सो गए हैं। निशांत काल आने पर आपको तो सेवा किया अभ्यास है ना, इसीलिए आपकी निद्रा अपने आप टूट जाती है। आप चकित नैनों से चारों तरफ देख रहे हो। सेवा काल अभी बीता नहीं है। चलिए निश्चिंत होकर आप शैया पर बैठ जाते हो। मलय पवन और चांद की किरणों की स्पर्श से सभी फूल विकसित हो गए हैं। उनका खुशबू चारों तरफ मदहोश कर रहा है। भौरे कोयल सब जाकर जुगल सरकार को जगाने के लिए उत्कंठित हो गए हैं और वृंदा जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप हाथ मुंह धोकर श्री गुरुदेवी के चरण कमलों को धीरे धीरे संवाहन करती हैं। उनको जगाकर आप उनके हाथ मुंह धुला देती हैं। इस तरह आप सभी गुरु मंजरी और रूप मंजरी और जितने सीनियर मंजरी हैं सबकी सेवा करती हैं। और फिर श्री गुरुदेव के आदेश से निकुंज मंदिर की बालकनी, गैलरी, जितनी वेदियां हैं, सब खुशबूदार पानी और सोने के झाड़ू से साफ करके पतले कपड़े से पोंछ कर आसन बिछा कर रखती हैं। जिगर सरकार के मुंह धोने के लिए आप सोने के गिलास में सुवासित जल रखती हैं और इसके पास आप एक सोने का डाबर अर्थात बेसिन भी रखती हैं। सोने के पात्र में चंदन, कुमकुम, केसर सब रखती हैं। मीठे मीठे फल जैसे अंगूर, अनार, इनका रस बनाकर आप इन अमृतमय पानकों को आप गिलास में रखती हैं। आप कर्पूर डालकर मीठे तांबूल बीड़ा भी प्रस्तुत करके रखते हैं, जिसको आप बहुत ही सुगंधित बनाती हैं। आरती के लिए घी और कर्पूर की बत्तियां सज्जित करके रखती हैं और फिर फूलों को चुनकर माला गूंथ कर रखती हैं। इस तरह आप सेवा की सब सामग्री सज्जित करके रखती हैं। इतने में वृंदा देवी जागकर विचकित नेत्र से चारों तरफ देखकर समझ लेते हैं कि अब तो जुगल सरकार के जागने का समय हो गया है। वे पंछियों को इशारा करते हैं और ललिता आदि सखियों के साथ वे भी जुगल सरकार के शयन मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। आप भी सबके चरणों में प्रणाम करके श्री गुरु देवी की बाईं तरफ खड़े होके खिड़की में आंखें डालकर जुगल माधुरी के दर्शन कर रहे हैं। आप प्रेम से विभोर हो गए हैं। ये सुंदर दृश्य देखकर आपके मन में खुशी नहीं समाती। वो देखिए श्री श्री राधा माधव कितने अलौकिक लग रहे हैं। उनका माधुर्य बिल्कुल निर्मल और कितना मनोहर है। उनका माधुर्य शयन मंदिर को आलोकित कर रहा है। वे पलंग पर शयन कर रहे हैं। पलंग रत्नों का है और उस पे फूल बिछाया हुआ है। रति रस के आलस में जुगल सरकार के सुंदर अंगों से उनके वसन भूषण सब बिखरे हुए हैं। गोविंद की अंग छटा ऐसी कि मंदिर का एक साइड पूरा नील वर्ण का हो गया है और राधा जी का भी अंग कांति ऐसी कि दूसरी तरफ पीत वर्ण यानी पीले रंग का हो गया है। गोविंद जी के बाई भुजाओं में प्रिया जी ने अपना मस्तक रखा है और उन्होंने अपनी बाहों से गोविंद का कंठ आलिंगन किया हुआ है। श्याम सुंदर अपने दाहिने जांघ से प्रिया जी का विपुल नितंब को पकड़े हुए हैं। उनके वक्ष पर प्रिया जी का उरोज है और श्याम सुंदर के मुखचंद्र पे प्रिया जी का मुखचंद्र सम्मिलित है। रतन पलंग के चारों कोने में चार सोने की लकड़ी है और उसके ऊपर कितना सुंदर एक चंद्रातप है। इस चंद्रातप पे स्वस्तिक कमल की सुंदर चिन्ह है और वो देखिए मोतियों के झालर उनमें से लटक रहे हैं। चारों दीवारों पे सोने की प्रतिमाएं हैं और हर प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू के हाथ में रत्न प्रदीप है। दीवारों पे राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र सुसज्जित है। उन चित्रों पे मालाएं लगाई गई हैं। पूरा कमरा अत्तर, गुलाब जल और कस्तूरी की खुशबू से सुवासित है। पलंग के चारों तरफ सोने की चौकियां हैं और चौकियों पे गिलास, मिठाई, तांबूल, इस तरह के विविध सेवा सुसज्जित है। आप श्री जुगल सरकार के निरुपम शोभा सिंधु देख रहे हो और इसमें आपके नयन महासुख से तैर रही हैं। आप एक दूसरे के साथ रसोद्गार कर रहे हो अर्थात रस भरी बातें कर रहे हो। कोई आपसे कह रही है कि देख सकी जुगल की शोभा जैसे कि हेमकांत मणि और नीलकांत मणि की तरह है। आप कहते हो सखी वो तो कठिन है लेकिन ये तो बहुत सुकोमल है। मुझे लग रहा है जैसे कि नील कमल और स्वर्ण कमलिनी एक दूसरे पे ढल रहा है। इतने में आप सुन रही है कि कोई सखी कह रही है नहीं नहीं कमल भी तो रात में मुरझा जाता है लेकिन ये तो मुरझाए हुए कहाँ। मुझे तो लग रहा है कि ये नए मेघ पे बिजली खेल रही है। तब तक कोई सखी कह रही है आपसे आहा नहीं नहीं बिजली तो चंचल है लेकिन ये तो स्थिर है। मुझे लग रहा है कि कोई नई तमाल के पेड़ में कोई कनक लता प्रेम से उसको घेरे हुई है। कोई सखी कह रही है सखी लेकिन तमाल कनक लता वो तो हिलते डुलते नहीं ये तो साक्षात श्रृंगार और प्रेम रस की मिलन माधुरी है। तब आप कहते हो सभी सखियों से कि सखियां मुझे तो ऐसा लगता है कि जुगल सरकार के साथ तुलना देने की तरह कोई वस्तु है ही नहीं। उनकी तुलना तो वे खुद है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी जो इनके मिठास की बराबरी कर सके। तभी आपको एक सखी दिखाती है देख देख प्रीतम की गोदी में नींद करते हुए प्रियाजी के श्रीमुख में कितनी मीठी एक हंसी उभर रही है। हाँ आप कहते हो कि हाँ मुझे लगता है कि वो वधुआ यानी अपने प्रीतम के बदन की तरफ देखकर हंस रही थी और ठीक उसी वक्त निद्रा सखी ने उन्हें आकर्षण किया वो सो गई और इसीलिए वो हंसी उनके श्रीमुख पर लगी है। इस तरह सखियों का रस वार्तालाप सुनकर आपके अंग में पुलक जागृत हो जाता है। आप रस के सागर में तैरने लगते हो।